We are reading from 8th Canto, chapter number 3, text 15. But we're what, starting? Oh, we're starting with 15th on the board? Is that right? Okay. Very good. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Namo Namaste Kila Karanaya. Diksharanaya Bhutakarandaya. Diksharanaya Bhutakarandaya.
Diksharanaya
Bhutakarandaya. Sarvagamam Jaya Maharnavaya.
Maharnavaya.
Namo Bhavargaya Parayana. Namo Namaste, Namaste, Kila Karanaya. Ishkaranaya, Bhutakaranaya. Translation.
Anuvad.
These are the prayers by Gajendra the elephant.
Yeh shlok Gajendra dwara bola gaya hai.
My Lord, you are the cause of all causes, but you yourself have no cause. बोलो
हे भगवान आप समस्त कारणों के कारण हैं किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है
therefore you are the wonderful cause of everything
अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं
I offer my respectful obeisances unto you
मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूं
you are the shelter of the Vedic knowledge contained in the Shastras
आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित
वैदिक
आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं
which are your representations
जो आपके ही साक्षात स्वरूप हैं
and who are the source of parampara system
और परंपरा पद्धति के स्रोत हैं
because it is you who can give liberation
जो कि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं
You are the only shelter for all transcendentalists.
अतएव आप ही अध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं।
Let me offer my respectful obeisances.
मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
Unto you. So before reading the purport, let us say the Guru Parampara prayers, please. Namah Om Vishnu Padaya, Krishna Prasaya, Gurudeva, Shrimate Bhakti Vedanta,
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शुद्धवादी पश्चात देशकाणे
ओम ओम
अज्ञान विनर्दस्य अनुदनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनुभूमिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाहमयं ददाति स्वपदान्तकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीकृतापदकमलम्
श्रीगुरुवैष्णवांश्च
श्रीरूपं सार्धचार्थमकरकृतान्तं संस्थितैर्गजीवम् सार्वैकं सार्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादात् स्वगणपतिता श्रीविशाखाद्गाश्च करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वारुद्रदेवी ब्रह्मानी हरी वक्षा सिंधु
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
राम राम हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं नमः देवं सरस्वतीं नित्यं भगवत सेवया भगवतुम श्लोके
अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ.
The Supreme Personality of Godhead is described herein as the wonderful cause.
यहाँ पर भगवान को अद्भुत कारण कहा गया है.
He is wonderful in the sense that although there may be unlimited emanations from the Supreme Personality of Godhead, Janmad Yasya Yataha, He always remains complete.
वे इस बात में अद्भुत हैं कि उनसे असंख्य वस्तुएं उदित होने पर भी जन्माद्य से था वे पूर्ण बने रहते हैं.
पूर्णस्य पूर्णम अदय पूर्णम एवा विशिष्यते. सो हु नोस व्हाट दैट श्लोक इज बिकॉज़ रॉबर्ट डजंट नो इट हियर. कम ऑन,
किसको पता है कि श्लोक कौन सा है और कहां से उदित है? अपना हाथ खड़ा करें जिन्हें पता है ये श्लोक. पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवा विशिष्यते.
That's not too bad. It's a famous verse from Ishupanishad. Yes. How the Lord always remains complete. With the adds or subtracts and so forth. You add or subtract something from the Supreme Lord, He remains complete. He expands, He remains complete. He winds up everything at the time of destruction of the whole Mahatattva, not destruction exactly, but just the devolution, you know, devolution, the opposite of evolution, you know, the shrinking up of the Mahatattva.
The बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है श्री उपनिषद से और इसका अर्थ है कि भगवान से अगर कुछ निकलता भी है तो भी भगवान पूर्ण रहते हैं. उनमें कुछ मिलता भी है तो भी भगवान पूर्ण रहते हैं. उनसे सृष्टि आती है तब भी भगवान पूर्ण रहते हैं और जब सृष्टि उसमें समा जाती है भगवान में तब भी वो पूर्ण रहते हैं.
So the Lord always remains complete no matter what he's doing, you see. Now, this is also the Lord is doing, you know, the process of creation is an action. He's also doing. Mahapurusha, Purusha avatars are all doing something. They're not, I mean, it may seem he's just resting in yoga nidra, but they're just doing something also, because his sleep is not like ours. No tamagun there.
The Bhagwan sirf yoga nidra mein vishram hi nahi karte, wo karya bhi karte hain. Unki nidra tamagun se mukt hai. To jo purush avatar hai, mahapurush, wo kuch na kuch karya kar rahe hain, jaise srishti kar rahe hain.
Garbhodakashaya Vishnu is also very busy because he's constantly giving instructions to Lord Brahma.
Garbhodakshaya Vishnu bhi bahut vyast hain kyunki wo nirantar Brahma ji ko nirdesh de rahe hain.
Bhana Swami explains that every morning, Lord Brahma, you know, wakes up from his sleep, and in the meantime, everything's been wiped out up to Swargaloka by the, you know, great Pralaya. Every night.
His Holiness Bhana Swami Maharaj ji samjhate hain ki Brahma pratidin subah uthte hain aur dekhte hain ki ratri mein jo Swargalok tak ki jo srishti thi usme pralaya aa chuka hai.
And he wakes up in the morning more or less bewildered.
और सुबह वो बिल्कुल मोहित अवस्था में जागृत होते हैं.
The high class version of the way we wake up in the morning.
और ये उसी प्रकार से है जैसे हम सुबह उठते हैं.
Wow, what am I supposed to do today? And like that, you know, this is Lord Brahma, but he's you could say slightly disoriented because he doesn't know what to do.
जैसे हम सुबह उठते हैं और बिल्कुल हम सोच में पड़ जाते हैं कि आज मुझे क्या कार्य करना है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब उठते हैं तो यही देखते हैं कि अब क्या करना है आगे.
So, the Supreme Personality of Godhead causes him to forget. So he's not on autopilot. Because by the will of the Lord, he wants the Lord Brahma should always be totally 100% dependent on him, so it causes him to forget what he's supposed to do. Then, my Lord, can you instruct him? Then, very patiently every morning, Garbhodakshaya Vishnu instructs Lord Brahma what to do.
Param Purushottam Bhagwan Hare ke hriday mein sthit hai aur unhi se smriti ya vismriti aati hai. और भगवान के कारण ही ब्रह्मा जी हर चीज को भूल जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं ब्रह्मा जी उन पर पूर्ण रूप से आश्रित रहें। और ब्रह्मा जी जब प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं तो परम पुरुषोत्तम भगवान बहुत ही धैर्य पूर्वक उनको निर्देश देते हैं।
So this keeps Lord Brahma always dependent on the Lord.
और ये ब्रह्मा जी को हमेशा भगवान पर आश्रित रखता है।
So Srila Prabhupada continues.
Srila Prabhupada आगे लिखते हैं।
In our experience in this material world, if we have a bank balance of $1 million, as we withdraw money from the bank, the balance gradually diminishes until it becomes nil.
भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते में $10 लाख हो तो हम जो जो धन निकालते जाते हैं त्यों त्यों बैंक की रकम घटती जाती है।
However, the Supreme Lord, the Personality of Godhead, is so complete. This is again the Shloka Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vasishyasi Upanishad. The Lord is so complete that although innumerable personalities of Godhead expand from Him, He remains the same Supreme Personality of Godhead.
और अंत में वे शून्य हो जाती है, किंतु भगवान इतने पूर्ण हैं कि यदि उनके असंख्य विस्तार हो जाएं, तो भी वही भगवान बने रहते हैं।
Purnasya Purnam Adaya Purnam Evashishyate. So again, Prabhupada is quoting the verse from Isha Upanishad.
Shri Isha Upanishad says, isi shlok ko Prabhupada dubara udit kar rahe hain.
Please keep in mind, you might say, well, why did Prabhupada repeat himself again? You say, why?
अपने मन में इस बात को रखिए, आप पूछ सकते हैं कि प्रभुपाद इसी बात को या किसी भी बात को क्यों दोहराते हैं?
Keep in mind that Srila Prabhupada said, these purports are my ecstatic realizations. If you have a notebook, write that down.
अगर आपके पास कॉपी है तो उसमें आप लिख लीजिए। श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये जो तात्पर्य है मेरे भाव विभोर साक्षात्कार है।
So when we see that Srila Prabhupada has repeated the shloka from Isha Upanishad, it is so perfect and complete for making his point here that he repeats it again because he's relishing it.
वो यहाँ पर दोबारा इसलिए दित कर रहे हैं क्योंकि वो इस तात्पर्य को लिखते हुए बहुत ही रस आस्वादन कर रहे हैं।
So purnasya purnam adaya purnam evashishite. Therefore he is the wonderful cause. Govindam adipurusham tamaham bhajame. That of course is Brahma Samhita, as you all know.
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते, इसलिए वे अद्भुत कारण हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
We're singing that every morning in a darshanarti, but we should also meditate on the meaning.
हम श्रृंगार आरती के समय प्रतिदिन इस प्रार्थना को अर्पित करते हैं, परंतु हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए और इसे हमें इस पर ध्यान लगाना चाहिए।
आदि पुरुषम means the original person, original enjoyer.
आदि पुरुष जो आदि पुरुष है।
भजामि, I worship.
भजामि, भजामि का अर्थ है मैं इनका भजन करता हूँ, इनको पूजा करता हूँ।
So how could there be a more perfect way what Prabhupada has introduced to greet the deities every day?
और इससे बेहतर और इससे पूर्ण तरीका क्या हो सकता है जो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें दिया है? हम प्रतिदिन भगवान का जो दर्शन आरती है भगवान का स्वागत करते हैं।
Yes, by reciting this prayer every morning when we greet the deities. Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajame, we are saying, my dear Lord Govinda, who is of course, Ramana is Govinda naturally.
So Govinda ka artha Bhagwan Krishna, Govind.
My dear Govinda, you are original person, original personality of Godhead. I offer my bhajan and I offer my dhanavat pranams unto you. So it's a very sweet way of greeting the deities actually. Perfect.
ये बहुत ही मधुर तरीका है भगवान को ग्रीट करने का, उनका स्वागत करने का। गोविंद, हे भगवान गोविंद, आप आदि पुरुष हैं, तम हम, मैं आपका भजन करता हूँ, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ।
Next, Srila Prabhupada continues his ecstatic meditation on Brahma Samhita because it's perfect, because it's the most perfect shastra to plug in to clarify and explain this shloka. It's the most perfect. Brahma Samhita is the most perfect explanation or what you call elaboration. Therefore, Prabhupada plugs it in, you see.
और आगे जो शिला प्रभुपाद का जो आनंदमय साक्षात्कार है उसको वो आगे लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूर्ण ग्रंथ है यहाँ पर उदित करने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है।
So everyone say together, please.
हर कोई कृपया साथ में कहें।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनज हर गोविंद सर्व कारण कारण. वन मोर टाइम. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनज हर गोविंद सर्व कारण कारण. इट्स वेरी स्वीट, isn't it?
बहुत ही मधुर है कि नहीं?
How many think that's sweet?
आप में से कितने भक्तों को मधुर लगता है?
Even Karuna thinks it's sweet, huh?
यहाँ तक कि करुणा चंद्र प्रभु को भी मधुर लगता है.
And that's sweet. It's bitter melon, huh? Okay.
You're saying it's very sweet.
Good, good. Kijaa. So Krishna, who is known as Govinda, is the supreme controller. He has an eternal, blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, for he is the prime cause of all causes. That's 5.1 of Brahma Samhita.
Brahma Samhita 5.1 से श्लोक है. गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता हैं. उनका शरीर शाश्वत आनंदमय तथा आध्यात्मिक है. वह सबों के उद्गम है. उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वह सभी कारणों के कारण है.
You know, it's explained the story how by the mercy of the Lord, specifically by the mercy of Lord Chaitanya, that we have Brahma Samhita today, specifically by His mercy.
ये संदर्भ आता है कि कैसे भगवान की कृपा से और विशेष कर श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा और आशीर्वाद से ये ब्रह्म संहिता का ये अध्याय आज भी उपलब्ध है.
How many of you know why we have Brahma Samhita today, specifically by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu?
आप में से कितने भक्त इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि क्यों आज ये जो ग्रंथ है उपलब्ध है विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही?
You don't know. You've been practicing for a while now, huh? How many years have you been practicing Krishna consciousness now?
He's in charge of bookshop.
Books are good decorations, right?
He sells Brahma Samhita.
But
he sings also. He remembers all verses of Brahma Samhita. He memorizes all verses of Brahma Samhita. He can sing without singing.
Well, that's first class. That's very nice. But we're talking about where the Brahma Samhita came from, and that is given in the Chaitanya Charitamrita. How we receive, you see, you haven't 5 years, but you have not started Chaitanya Charitamrita yet?
Yes, finished.
Huh?
Just
started. Just now started.
तो महाराज इनसे पूछ रहे हैं कि इन्हें बहुत ही अच्छा है कि इन्हें सारे श्लोक याद हैं, और पूछ रहे हैं कि आप चैतन्य चरितमृत आपने पढ़ी है? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने अभी जस्ट शुरू किए हैं भागवत.
How many of you read at least part of Chaitanya Charitamrita?
आप में से कितने भक्तों ने एटलीस्ट चैतन्य चरितमृत का कुछ ना कुछ पार्ट पढ़ा है?
I'm sure you've read something from Nityananda Shri. You must have read something, yes? You read something from Chaitanya?
No.
You have not read anything from Chaitanya?
Read from the chapter page.
My God, man. You know, the thing is this. This, I have to tell you bluntly. It's my duty as a Prabhupada disciple, sannyasi, to inform you bluntly, truthfully. That's my duty. Otherwise, there's no meaning to being a sannyasi Prabhupada disciple. None whatsoever. Unless I can be very straightforward.
तो महाराज बता रहे हैं कि ये मेरा कर्तव्य है कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य होने के नाते, वरिष्ठ भक्त होने के नाते, सन्यासी होने के नाते, कि आपको मैं सच सच बिल्कुल साफ बिना किसी कॉम्प्रोमाइज करे बताऊं.
एनी ऑफ यू, आई चैलेंज ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर, बट ऑफ कोर्स स्पेशली यू नो द ब्रह्मचारीज, द आउटसाइडर्स हैव एन एक्सक्यूज, बट यू गाइस हैव बीन हियर फाइव ईयर डिवोटी, नो एक्सक्यूज.
तो मैं आपको चुनौती देता हूं, विशेषकर ब्रह्मचारियों को, बाहर के जो भक्त हैं उनके पास कोई एक्सक्यूज है कि आपको कम से कम 5 साल हो गए हैं कृष्ण भावनामृत में, तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपके लिए.
बिकॉज बिफोर यू गाइज वर बोर्न,
क्योंकि आपके पैदा होने से भी पूर्व
I was temple president in a small temple in central United States called St. Louis, Missouri.
मैं मध्य यूनाइटेड स्टेट मध्य अमेरिका में सेंट लुइस मंदिर में मंदिर का अध्यक्ष था
Around 1973 perhaps.
1973 में
When the Chaitanya Charitamrita came out.
जब चैतन्य चरितामृत बाहर आई थी प्रकाश
So immediately they were distributed to all the temples had ruchi in those days.
उस समय इस ग्रंथ का सभी मंदिर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और सभी मंदिर को बहुत ही रुचि थी प्रभुपाद जी की पुस्तकों का
अध्ययन करने बुक केम आउट हॉट ऑफ द प्रेस
अगर एक पुस्तक गरम गरम प्रकाश से निकली हो
बिफोर द इंक वॉज ड्राई द डिवोटीज वर डिवोरिंग इट लाइक सो मेनी शार्क्स गोइंग आफ्टर सम बेट डिवोटीज वर डिवोरिंग इट लाइक स्टार्विंग पर्संस Who are given a big, big plate of of rajbhoga, devouring. That was the way it used to be.
जैसा कि एक शरीर, एक शेर अपने शिकार पर हमला करता है, उसी प्रकार से जो भक्त हैं, वो इसी ताक में रहते थे कि कब कोई नई पुस्तक का प्रकाशन होगा, और जैसे ही वो प्रकाशित होती थी, वो तुरंत इसको निगल लेते थे, जैसे कि एक भक्त राजभोग के लिए रुचि रखता है।
Furthermore, Prabhupada ordered the distribution of Chaitanya Charitamrita to the meat eaters, the fornicators, the drunkards, not middle of the street drunkards, but I mean to say, they're drinking liquor, smoking cigarettes, and eating meat, and Prabhupada said, distribute these books, Chaitanya Charitamrita. They're not devotees!
और यही नहीं इसके आगे श्रीला प्रभुपाद जी ने सबको निर्देश दिया था कि इस ग्रंथ को आप बाहर ले जाओ और जितने भी लोग हैं उसको आप इसका वितरण करो उसमें से चाहे कोई शराब पीता हो कोई सिगरेट पीता हो वो किसी भी प्रकार के पाप में कार्य में क्यों ना लगा हो उसको आप ये ग्रंथ चैतन्य चरितामृत उनको दें
Where from comes this idea that you have to wait 5 years before you start? Prove to me that Prabhupada gave that instruction. Prove it and I'll surrender. I'll surrender if you prove it to me that Prabhupada said all the devotees must wait at least 5 years before they approach Sri Chaitanya Charitamrita. Prove it to me and I'll surrender.
तो महाराज कह रहे हैं कि ये कहां पर प्रभुपाद ने निर्देश दिया कि आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए आप अगर ये प्रूव कर दोगे तो मैं शरणागत हो जाऊंगा
See, Krishna is very mischievous.
ये देखिए कि कृष्ण बहुत ही रहस्यमयी है
And I'm part of parcel of Krishna.
और मैं कृष्ण का ही अंश हूँ.
So I'm a little mischievous also.
और मैं भी थोड़ा शरारती हूँ.
So Prabhupada never made this restriction. So of course you have to read the little books. I mean, my God, you know. So one devotee, he's like more than a year now has not graduated from little books yet. Just started the Bhagavad Gita recently.
मैं एक भक्त को जानता हूँ उसको कृष्ण भावनामृत में 9 साल हो गए हैं और वह अभी छोटी पुस्तकों से ही
ओके फाइन 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 यू नो दैट्स यू प्रमोशन नो नो नॉट 9 years नो दैट आई डोंट थिंक इट्स क्वाइट दैट बैड
तो उस भक्त को क्षमा कीजिए 1 साल हुआ था और अभी वो भगवत गीता उसने पढ़नी शुरू की है छोटी पुस्तकें सारी पढ़ने के बाद
द थिंग इज इफ यू वांट टू गो फ्रॉम हियर टू कोलकाता
बात ये है कि अगर आप यहां से कलकत्ता जाना चाहते हैं
व्हिच इज अ मोर इंटेलिजेंट प्लान टू टेक द राजधानी और टू टेक द लोकल दैट स्टॉप्स एट एवरी पडल जंप
तो आप तो इसमें किस बात में बुद्धिमता है कि आप एक राजधानी ट्रेन में टिकट बुक करना चाहेंगे या एक ऐसी ट्रेन में जो हर स्टेशन पर रुकती हो
5 months
फ्लाइट एयरवेज
इज दैट अ नॉट अ स्टेशन व्हाट इज दैट
एयरवेज
एयर टिकट ओके बाय रॉकेट शिप Oh, with technology, maybe in the future there'll be rocket ship service between Delhi and Calcutta, huh? Technology, keep dying, honey, bah! Of course, it's all going to blow up, but anyways, never mind.
So Prabhuji ne uttar diya ki wo ek aeroplane se jana chahenge.
So the point is that Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Mahaprabhu, is described how he was on tour in South India, but the Brahma Samhita was lost.
Sri Chaitanya Mahaprabhu Dakshin Bharat ki yatra par the, aur vaise Brahma Samhita lupt ho chuka tha.
By his own will, of course. Somehow or other, he found an ancient manuscript during his tour. You know, they, because try to understand that so-called primitive Indian technology. Try to understand how primitive Indian technology was.
और श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी स्वेच्छा से उनको कुछ लिपियां प्राप्त हुई. अब ये समझने का प्रयास कीजिए कि जो भारतीय जो टेक्नोलॉजी है उस समय कितनी पुरानी थी.
So how long these paper books are modern invention. Try to understand. These paper books are modern invention.
ये जो कागज की पुस्तकें हैं ये अभी आधुनिक इसकी रचना हुई है.
Formerly, the Shastra, because you know, there were not junky novels 5,000 years ago, you know, really there weren't. I don't want to disappoint anybody, but 5,000 years ago there weren't any junky, rotten sex novels, cinema novels, and all that rubbish. It wasn't existing 5,000 years ago.
मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, परंतु 5,000 वर्ष पूर्व किसी भी प्रकार का ऐसा जो ऐसी पुस्तकें नहीं थे जिसमें बिल्कुल कूड़ा करकट गंदे विषयों के बारे में चर्चा की गई हो.
So the only thing that was in writing was Shastra.
एकमात्र चीज जो लिखित में थी वो शास्त्र थे.
I mean, not that they were all pure devotees, but they were speculators, gyanis, and bogies, and all that. But the point is, they at least fancied that they were on the path of civilization, and that's all that was in the writing. You couldn't buy a rotten cinema novel. It was not available.
तो ऐसा नहीं है कि उस समय सारे शुद्ध भक्त ही थे. उस समय अलग अलग योगी मानसिक कल्पना करने वाले भोगी अलग अलग लोग थे, परंतु उनका जो रुचि थी वो आत्म साक्षात्कार में ही थी. और आपको उस समय बिल्कुल सड़े गले इस प्रकार के पुस्तकें नहीं मिलती थी.
Those of you who might be attached to reading rotten cinema novels, you know, about, you know, some, you know, illicit sex and meeting and intoxication, that's all they're about, you know. But if you want to travel back in time to 5,000 years, actually less than 5,000 years ago, then if you're attached to this modern rubbish, you would be disappointed. Sorry, you'd be disappointed because you won't find it.
अगर आप इतिहास में देखेंगे आज से कुछ हजार वर्ष पूर्व इस प्रकार के ग्रंथ सिनेमा नॉवेल्स जिसमें सिर्फ चार पाप के बारे में ही वर्णन किया हुआ है आपको वो कहीं नहीं मिलते.
So, in so-called primitive Indian technology,
तथा कथित पुरानी भारतीय टेक्नोलॉजी,
they didn't have these paper books because a paper book like this, you know, it's a big deal for a paper book to last for 100 years is a big deal. You know, that's a big deal. I mean, it has to be well preserved in a library or something. Otherwise, these paper books are not going to last for 100 years even. What to speak of 5,000 years, 10,000 years, 15, 20,000 years?
ये जो पेपर की पुस्तकें हैं ये 100 साल तक नहीं रह सकती और हजार 10,000 वर्ष के लिए तो बात ही क्या कहें.
So then how was the Shastra recorded then? No paper books, and how was it recorded?
तो जो शास्त्र है उनका जो कैसे उनको प्रिजर्व या रिकॉर्ड किया जाता था उस समय ऐसे.
How many of you know?
आप में से कितने भक्तों को पता है?
This side of the room doesn't know. Oh, Keshava, he knows everything. He's okay. Atma Rama, okay. The Shastra was recorded on palm leaves. Palm leaves.
जो शास्त्र है वो palm leaves पर लिखे जाते थे, ताड़ वृक्ष के पत्तों पर.
Palm leaves don't decompose very easily. I mean, you know, if you put it in a marsh, you put it in the muddy water or something, expose it. But the point is, if they're kept dry, they keep for thousands of years. So the Shastra was always reported on palm leaves with what's called India ink.
जो ताल वृक्ष के पत्ते होते थे वो बहुत लंबे समय तक ठीक ठाक अवस्था में रह सकते हैं, हजार वर्ष तक, और उस पर जो भारतीय इंक से लिखा जाता था.
How many of you don't know what Indian ink is?
आप में से कितना भक्तों को नहीं पता कि भारतीय इंक क्या है?
Don't know.
जिनको नहीं पता वो हाथ खड़ा करें.
Indian ink.
भारतीय इंक.
Why it's called Indian ink?
और उसको भारतीय क्यों कहा जाता है?
Not ink for incorporating. We're talking about ink for writing, huh? Ink for putting an old-fashioned pen. You know, old-fashioned was in those days. The writing was with a feather, you know, or something like that, or some different, some kind of technology like that.
तो जो उस समय इंक पेन नहीं हुआ करते थे, जो पंख से उस इंक पंख को इंक में डुबाया जाता था और उससे लिखा जाता था.
So the ink that they were used is called indelible. Indelible means that it doesn't come out. It's solid black, total black, and it's indelible means once it's on something, it doesn't come out. You could put as much bleach as you like, it will never come out. Never. Indelible means you can't remove it. So that's what they used for writing the Shastra.
तो जब भारतीय स्याही है, उसका ये गुण होता था कि एक बार लिखने के बाद आप किसी भी तरीके से उसको मिटा नहीं सकते थे या वो बाहर नहीं आती थी.
Make a note of that, please. India ink explanation. Please make a note of it. It's good for preaching. It's good for preaching because they want to say that things were so primitive, really, that how come they could write books that would last for thousands of years, which cannot be done in modern technology. Can't be done. Ha ha! What to speak of what your computers, oh my God, you know. Or, you know, all these modern gadgets, you know. You're lucky if they last 4 months before they break down.
So, आप इस पॉइंट को अपने पुस्तक अपने कॉपी में लिख सकते हैं. ये प्रचार के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है क्योंकि लोगों को लगता है कि पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी तो बहुत बेकार है, परंतु ये उदाहरण दिखाता है आज कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऐसे हजारों वर्ष तक प्रिजर्व करने वाली पुस्तकों को लिख दे. और आजकल विशेष जो गैजेट आ रहे हैं उनकी तो बात ही क्या कहें. आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे कि 4 महीने तक आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बिना खराब हुए अगर आपके पास रह जाए तो.
I just had to reset my 4-month-old Android phone because Pramantra knows all about it. I had to reset it because it was corrupted after 4 months of technology. I have this to say about technology. I mean, it's useful, but it's also a headache.
तो जो मेरा नया फोन था उसको 4 महीने भी नहीं हुए थे कि वो करप्ट हो गया एंड्रॉइड फोन और उसको मुझे रीसेट करना पड़ा.
But so-called primitive technology is the palm leaves that last for thousands of years, and there are still palm leaves that are thousands of years old with this India ink. So that name India ink, that is the Western name for it. UK and US, they call it still. If you go to a stationery shop and you ask for India ink. They will pull the bottle off the shelf of this indelible, the best ink in the world. You see? Still, it's called Indian ink. Why you say India is so primitive already? Then how come they have the best ink in the world for thousands of years, that lasts for thousands of years? Not something new. Not a new recipe. Not at all.
तो ये भारतीय इंक आज भी उपलब्ध है. अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे और उसे कहेंगे भारतीय इंक चाहिए, और विशेषकर जो यूके और यूएस से हैं वो भी इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं. और आज के समय में भी ताल वृक्ष के पत्तों पर जो लिखा हुआ वो आज भी उपलब्ध है.
So Chaitanya Mahaprabhu found only the 5th chapter of Brahma Samhita, and so that's all we have today. We don't have the complete and full Brahma Samhita. We only have the 5th chapter, but that in itself is enough for full self-realization, certainly.
श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय मिला, तो हमारे पास ये एकमात्र अध्याय उपलब्ध है. हमें हमारे पास पूरा ग्रंथ नहीं है.
So I'll read a little something more for the purport. Even in this material world, we can understand that the sun has existed for millions of years and has given off heat and light since its creation. Yet the sun still retains its power and never changes.
इस भौतिक जगत से भी हम समझ सकते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और ऊष्मा तथा प्रकाश देता रहा है, फिर भी उसकी वही शक्ति बनी हुई है.
What then is to be said of the supreme cause, Param Brahma Krishna?
उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता तो फिर उस परम कारण परम ब्रह्म कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए?
Everything emanates from him perpetually, yet he maintains his original form, Satchidananda Vigraha.
उनसे हर वस्तु निरंतर उद्धृत होती रहती है फिर भी वह मूल स्वरूप सच्चित आनंद विग्रह बनाए रहते हैं.
Skipping forward, you know, so Srila Prabhupada says, everyone must take shelter of Krishna. Is therefore advised.
ये इसलिए सलाह दी जाती है.
Everyone say please. Akama sarvakamava. Moksha kama udaradi. Divrena bhakti yogena. Yajita purushamparam. One more time with some enthusiasm. Akama sarvakamava. Moksha kama udaradi.
Moksha kama udaradi.
Divrena bhakti yogena.
Divrena bhakti yogena.
Yashita purusham param. This verse is extremely important.
Ye shlok bahut hi mahatvapurna hai.
Whether one desires everything,
chahe koi sakam ho,
that's sarva kamo. Kama means desire. Kama doesn't just mean lust, it means desire also.
Sarva kama, kam ka arth sirf kama ki ichha hi
nahi. Sarva means everything. You want everything, you want the red motorbike. No. You want the Mercedes Benz. Oh no, you want something better than Mercedes Benz. You want sarva kama.
Sarva kama, har prakar ki ichha.
So whether you want everything,
ya har cheez chahte ho,
or moksha kama, you want liberation,
ya fir aap mukti chahte ho, moksha kama,
divrena bhakti yogena yajeta purusham param. He's intelligent. That person is intelligent only if he worships Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by rendering transcendental loving service.
वह तभी बुद्धिमान कहा जाएगा जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति करके भगवान कृष्ण की पूजा करता हो.
So we'll stop there. Anyone have any questions?
तो हम यहीं पर विराम देंगे. किसी का कोई प्रश्न है?
Yes, Prabhu. Loudly, please.
Maharaj, why creation and annihilation take place? Like, why the cycle repeats every day of, in every day of Brahma that annihilation will happen?
Why should the creation take place?
Annihilation take place?
Why this process of creation and annihilation repeats itself? Why? What is the purpose of taking? What is the purpose of annihilation?
Well, I could give a whole seminar on that. Repeat the question, please.
तो प्रोजी का प्रश्न है कि जो सृष्टि का संहार क्यों होता है या उसके बाद दोबारा सृष्टि आती है फिर संहार होता है तो इसका क्या कारण है इसके पीछे? तो महाराज कह रहे हैं इसके ऊपर मैं पूरा सेमिनार दे सकता हूँ.
I can't really explain in 1 minute, but I'll give you 1 minute explanation anyways.
तो मैं आपको एक मिनट में समझाने का प्रयास करूंगा.
The living entities, there are unlimited living entities.
असंख्य जीव है.
So every jiva has desire. Unlike the Buddhist philosophy and Mayavadi philosophy, they're trying to nirvisesha shunyavadi atmahana. They're trying to kill the soul. It cannot be done.
जो बुद्धिस्ट हैं या जो मायावादी हैं वो आत्मा को खत्म करने पे लगे हैं. सारी इच्छाएं जड़ से हटा देना चाहते हैं.
So built into the soul is desire. It cannot be removed. You have to desire something.
तो आत्मा का स्वभाव ही है इच्छा करना. आप इच्छा को आत्मा से अलग नहीं कर सकते.
So nirvishesha shunyavadi is artificial because you cannot remove, you know, you can't remove it. Just like wetness cannot be removed from water.
जैसे पानी से गीलापन हम हटा नहीं सकते उसी प्रकार आत्मा से इच्छा को हटाना बहुत ही कठिन.
Desire is built in.
तो जो इच्छा है वो आत्मा का स्वभाव है.
You buy a computer and the hard drive is already built in. Understand? It's part of the machine. It's part of the device. So desire is part of Atma automatically. by default, cannot be removed.
तो जो आत्मा है वो जो इच्छा है वो आत्मा का पार्ट है उसको हटा नहीं सकते.
In one phase of creation, so many atmas, their desires are not fulfilled yet, you see. They have unfulfilled material desires. Therefore, they have to come back again so that the merciful Lord Vishnu can fulfill their desires. That's all. That's the sum of the concept. And so if they're not complete, oh well, okay, fine. It's just like if you're in school, you've been in school, and if somebody fails sixth grade, sometimes they might have to repeat, you know?
जैसे स्कूल में अगर कोई छठी क्लास में फेल हो जाए तो उसको क्लास रिपीट करनी पड़ती है. उसी प्रकार से असंख्य जीव हैं, उनकी जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए सृष्टि का बार बार इसकी संरचना होती है और उस बार बार उसका संहार होता है.
Unfinished business, that's why. Understand? There, merciful Lord causes another creation, so all the jivas go back into his body. When they come out again, they pick up where they left off with their unfulfilled desires according to their karma. 8,400,000 species.
ऐसे 84 लाख योनियां हैं.
Okay. Thank you very much. Jagaguru Sri Prabhupada ki jai. Granth Rashi Ma Bhagavatam ki jai. Shishi Gaurita Jagannath Swami Baladeva Subhadra ki jai. Shishi Krishna Balaram Radhi Karman ki jai. Nita Gaur Puramanandi Hare.
Resonance Bhakti Madhavi Gobind Swami Maharaj ki jai.